नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट से पहले नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग की टीम ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक स्थगित की। मौसम विभाग ने सोमवार तक देश के कई हिस्सों में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश में बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव और राहत अभियान के लिए सेना बुलाई गई। और विम्बल्डन टेनिस में आज महिला सिंगल्स और पुरुष डबल्स सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट से पहले नई दिल्ली में नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्र, शीर्ष अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ मौजूद हैं। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभा में वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। उन्होंने कहा था कि महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही इस बजट में कई ऐतिहासिक कदम देखने को मिलेंगे। लोकसभा चुनाव के कारण इस वर्ष फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी ने अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा को ऐतिहासिक और बेहद उपयोगी बताया है। उन्होंने ऑस्ट्रिया के लोगों के आतिथ्य और स्नेह के लिए चांसलर कार्ल नेहमर और ऑस्ट्रिया की सरकार का आभार व्यक्त किया। भारत और ऑस्ट्रिया ने बुनियादी ढांचा विकास, नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, जल और कचरा प्रबंधन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। ये आयोजन बिम्स्टेक समूह के सदस्यों को बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा, संपर्क, व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। अपनी यात्रा के कल दूसरे दिन उपराष्ट्रपति मुंबई के नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कल वे राजभवन भी जाएंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ निर्वाचन उपायुक्त नीतीश व्यास और धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का 6 सदस्यीय दल राज्य के दौरे पर है। ये दल आज सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। इससे पहले निर्वाचन आयोग के दल ने झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी और अन्य संबद्ध अधिकारियों के साथ बैठक की थी। वरिष्ठ निर्वाचन उपायुक्त ने अधिकारियों को मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान पूरी सावधानी बरतने का निर्देश दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा 2024 मामले की सुनवाई इस महीने की 18 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पार्टियों को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामों पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए स्थगन दिया। शीर्ष अदालत में आज विवादास्पद नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होने थी। इनमें 5 मई की परीक्षा के दौरान अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली और दोबारा परीक्षा कराने की मांग करने वाली याचिकाएं शामिल हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने आज नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य परिसर में एक नए फाइलिंग काउंटर तथा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। नया केंद्र न्यायालय में कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए वकीलों को उनके मामलों से संबंधित सभी दस्तावेजों के केंद्रीयकृत रिकॉर्ड प्रदान करेगा। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस अवसर पर कहा कि बहुसुविधा केंद्र भारत के लोगों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा।
The idea of this multi-facilitation center is right at the entry point to the Supreme Court. All litigants, all lawyers coming to the court must have a single point where they can file cases, obtain information about cases, and yet do it in a very comfortable environment consistent with our weather patterns. So I hope this facility will enhance the quality of service which the Supreme Court renders to all the citizens of the country.
इससे पहले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने नए फाइलिंग सेंटर के उद्घाटन के दौरान ब्राजील के न्यायाधीश जस्टिस एंटोनियो बेंजामिन का स्वागत किया और उन्हें भारत का घनिष्ठ मित्र बताया। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे जस्टिस बेंजामिन भारत के दौरे पर हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर लोगों से किए गए वायदों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने सभी तथ्यों के साथ आरोप पत्र दायर किया है और आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं के संबंध में अदालत को सबूत दिए हैं।
आज दिल्ली का हर निवासी उससे त्रस्त, कई तरह के बड़े बड़े वादे किए, दिल्ली को साफ करेंगे, कचरे का ढेर बंद कर देंगे, हटा देंगे, कोई भी वादे पे खरे नहीं उतरे। दिल्ली वासियों को पानी की व्यवस्था कर नहीं पाए, शराब के ऊपर उनका फोकस रहा हमेशा। केजरीवाल जी ने शराब घोटाले में जो काम किया, आज उसके कारण संपूर्ण राजनीतिक जीवन पर, उनके विचार पर, उनकी सोच पर एक बड़ा प्रश्न मार्क लगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में उनकी कहानी मेरी कहानी व्याख्यान श्रृंखला के तहत व्याख्यान देंगे और उपस्थित लोगों से बातचीत करेंगे। इसमें साइना नेहवाल सहित पद्म पुरस्कार विजेता महिलाएं शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू का खेलों के प्रति स्वाभाविक प्रेम उस समय देखने को मिला जब उन्होंने बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ राष्ट्रपति भवन में बैडमिंटन खेला। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय संग्रहालय में फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। थाईलैंड भारत इंटर वोवेन लेगेसी स्ट्रीम ऑफ फेथ इन बुद्धिज्म के नाम की ये प्रदर्शनी भारत और थाईलैंड के बीच एक सहयोग है जिसमें भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि देने वाली तस्वीरें शामिल हैं। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि प्रदर्शनी भगवान बुद्ध और उनके शांति और करुणा के संदेश के प्रति थाई समुदाय की गहरी भक्ति और श्रद्धा को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि भारत और थाईलैंड ने लंबे समय से ऐसे कार्यक्रमों की मेजबानी की है जिन्होंने उनके सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया है।
The ideals of Lord Buddha serve as a spiritual bridge between India and Thailand, forcing a deep-rooted connection. Today, this photographic exhibition displays the National Museum, captures the emotional outpour and the deep-rooted devotion and reverence of the Thai people towards Bhagwan Buddha and his message of the peace and compassion.
थाईलैंड के विदेश मंत्री मॉरिस सांगियामा पोंगसा ने भगवान बुद्ध की विरासत का सम्मान करने का अवसर देने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद दिया। श्रीलंका की नौसेना ने 13 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है और आज उन्हें कंग के संतुरई बंदरगाह ले जाया गया। पुद्दुकोटई के रहने वाले मछुआरे कच्चा तीवू के पास मछली पकड़ रहे थे। हाल ही में इस महीने की पहली तारीख को श्रीलंका की नौसेना ने 25 मछुआरों को पकड़ लिया था। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आज एक निजी बस और कंटेनर के बीच टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। ये हादसा आज सुबह सिकंदरा राव इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर हुआ, जब तेज रफ्तार बस खड़े कंटेनर से टकरा गई। प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायलों को हाथरस और अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र के मध्य भाग और तटीय कर्नाटक में सोमवार तक भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। गुजरात में भी अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, मेघालय और बिहार में भी आज तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी आज भारी बारिश होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में बचाव और राहत अभियान में मदद के लिए सेना को बुलाया गया है। मध्य सूर्य कमान ने बचाव कार्य में मदद के लिए 2 टुकड़ियां शाहजहांपुर जिले में भेजी है। गर्रा और खनौत नदी की धारा में 264 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तराई क्षेत्र के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। 12 जिलों के 633 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के कारण हजारों एकड़ कृषि भूमि डूब गई है और लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से पिछले 24 घंटों में 5 अन्य लोगों की मौत हो गई। बाढ़ से अब तक 84 लोगों की मौत हो चुकी है। आपदा सूचना प्रणाली के अनुसार 27 जिलों में 14 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तराखंड में जोशीमठ के पास भूस्खलन के कारण चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग आज लगातार 3रे दिन सड़क यातायात के लिए अवरूद्ध है। हालांकि एसडीआरएफ के जवान तीर्थयात्रियों को पैदल सुरक्षित सड़क पार कराने में मदद कर रहे हैं। हीरा पंचमी अनुष्ठान पुरी में रथ यात्रा का एक अभिन्न अंग है। त्योहार के 5वें दिन इस अनुष्ठान में भव्य जुलूस निकाला जाता है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
आज मनाया जाने वाला हीरा पंचमी उत्सव रथ यात्रा के दौरान श्री मंदिर से दूर रहने और उन्हें साथ न ले जाने के लिए भगवान जगन्नाथ के प्रति देवी लक्ष्मी के क्रोध को दर्शाता है। देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ की श्री मंदिर से लंबी अनुपस्थिति से नाराज हैं। सेवक देवी लक्ष्मी को पालकी में गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया जाता है। उन्हें एक अज्ञान माला, सहमति की माला मिलती है, लेकिन वे गुंडीचा मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि दरवाजा बंद है। अपने किए पर पश्चाताप करते हुए देवी लक्ष्मी बिना किसी धूमधाम के हेरा गोहिरी साही के माध्यम से चुपके से श्री मंदिर लौट आती हैं। हेरा पंचमी वापसी यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि रथों को दक्षिण मोड़ा नामक प्रक्रिया में दक्षिण की ओर मोड़ा जाता है। एसएन पटनायक और मलय रंजन मिश्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सकलैन अख्तर।
विम्बल्डन टेनिस में कजाकिस्तान की एलिना रबाकीना आज शाम महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेचिकोवा से खेलेंगी। चौथी वरीयता प्राप्त रबाकीना यूक्रेन की एलेना स्वीतोलिना को हराकर अंतिम 4 में पहुंची। पुरुष डबल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के मार्सेल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के हेरेसियो जेबोल की जोड़ी ऑस्ट्रिया के मैक्स पर्सेल और जॉर्डन थॉम्पसन की जोड़ी से मुकाबला करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट से पहले नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग की टीम ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक स्थगित की। मौसम विभाग ने सोमवार तक देश के कई हिस्सों में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश में बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव और राहत अभियान के लिए सेना बुलाई गई। और विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स और पुरुष डबल्स सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।